पता नहीं ये हकीकत है या ख्वाब।
आप जिंदा भी हैं और बहोश हवास भी, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी जब शुरू शुरू में होश में आए थे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो या बेहोशी का आलम।
अगर आप दोनों को ना देखता तो यकीन आ जाता मैं जिंदा हूँ।
लेकिन आप वाकई जिंदा हैं।
हाँ, जानता हूँ। तो क्या वो डरावने ख्वाब, वो मंजर, वो सब हकीकत थे?
बिल्कुल वो सब हकीकत थी।
बाकी लोगों की क्या खबर? फिर उन्हें देखा? हमारे बाद फिर किससे बात की? हम दोबारा नजर आए?
तुम लोग फिर नजर नहीं आए, सिर्फ मिसेस हिकमत को देखा था। वो सख्त आजाब झेल रही थी मेरी आंखों के सामने, वो फरियाद और इल्तिजा कर रही थी। और फिर हर तरफ आग के शोले भड़क उठे, बिल्कुल पिघले हुए लावे की तरह। जहां जहां गिरता सब कुछ खाकस्तर कर डालता, सब कुछ, सब कुछ। तन्हा होना, तन्हा होना, ऐसे वहशतनाक हालात में तन्हा होना बहुत सख्त है। और जब इंसान गुनाहों में आलूदा भी हो, खुदा ही जानता है पैमान किस हाल में होगा।
पहले तो मैं समझती थी कि मौत का खौफ मरने के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन जब मैंने मौत का खुद मुशाहिदा किया तब पता चला कि मुसीबतों की शुरुआत तो अब है। अब तक भी किस्मत ने हमारा साथ दिया था, हर्षित की ये छुटकारा जुज वक्ती ही क्यों ना हो। काश, काश खुदा खुद हमारी किसी तरह मदद करे ताकि हम अपने गुनाहों की तलाफी कर सकें। कुछ इस तरह के फिर अगर हम मर जाएं तो दोबारा उस जगह ना जाएं।
रूहों से किए गए वादे का क्या हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? इंजीनियर पैमान, मिसेज हिकमत।
मिसेज हिकमत ने अपनी मौत के मुतालिक कुछ नहीं बताया, यही कि वो किस तरह सीढ़ियों से गिर गई थी।
तो क्या तुम लोगों को नहीं मालूम? मिसेज हिकमत को उनकी बहू ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, यानी किसी को पता ही नहीं चला, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया।
कोई सबूत जो नहीं, कोई गवाह नहीं।
कौन है?
मेरी बात गौर से सुनो। सलीम ज़ादा साहब को होश आ गया है
और उन्होंने इस हकीकत का इंकशाफ किया है कि आपकी वाइफ शीवा ने आपकी वालिदा को मारने के इरादे से सीढ़ियों से धक्का दिया था। सुना तुमने, तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ है, वो भी तुम्हारी अपनी बीवी के हाथ।
ये पागल हो गया है, इन्हें बस बेकार की बातें बनाना आती है। तुम इन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? हाँ, मैं लालची लोगों से तंग आ चुकी हूँ और क्रांति इन सबसे बदतर है। बेहतर होगा हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, या फिर हम ये घर बेचकर और तमाम रकम लेकर ईरान से निकल जाते हैं। जरा सोचो तो, हमें इन सबसे निजात मिल जाएगी, वहाँ हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। ठीक है,
किसी बात की परेशानी है?
किस बात की?
मसलन इस बात की के कहीं
क्या कहना चाहते हो?
अगर करामती साहब की बात सच हो गई,
यानी तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया? पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? हाँ,
जिस दिन मेरी माँ उन सीढ़ियों से गिरी थी तुम कहाँ थी? शाम 4:30 बजे।
क्या मतलब? देखो, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो।
सवाल का जवाब तो बस।
लेकिन क्या वाकई तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया? कब से तुम्हारे लिए वो बुढ़िया इतनी अहमियत की हामिल हो गई? हाँ, जॉब चले हो माँ के हमदर्द बनने।
अच्छा,
तुम्हारी माँ तो कत्ल किए जाने के भी लायक नहीं थी, वरना मैं ये भी कर गुजरती। अगर तुम्हारे लिए वो इतनी अहमियत रखती तो तुम कभी भी उसे छुटकारा पाने की कोशिश ना करते। लगता है जो बातें तुमने हॉस्टल में कही थी वो तुम भूल गए हो। बुढ़िया भिखारन कहीं।
अजीज़े मन, मेरी जान, मेरे लिए भी वो कोई अहमियत नहीं रखती थी। तुम्हारी कसम, उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा किया या नहीं। तुम उस रोज अपनी गाड़ी के लिए माँ से सूद पर पैसे लेने के लिए ये आना चाह रही थी ना?
हाँ मैं उनसे पैसे लेना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो औरत अपने ऊपर एक दमड़ी खर्च नहीं करती, जो तुम पर और अपने बेटे पर खर्च नहीं करती, वो बुढ़िया मुझे क्या पैसे देगी। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मुझ में उस आदमी की बातें सुनने का हौसला अब नहीं है। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम मेरा और दिमाग मत खराब करो। चलो हाँ मैंने ही उन्हें मारा है, तुम कह रहे हो ना, तो मैंने ही उन्हें मारा है। हाँ मैंने ही उन्हें मारा है।
शिवा,
मैंने नहीं मारा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा।
शिवा शिवा, अब देखना तुम्हारा क्या हशर करता हूं।
अब मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मैं बिलाखिर लोगों के पैसे उस होशंग और उसकी बीवी शिवा के चुंगल से निकलवा के रहूंगा।
ये इतना आसान काम नहीं है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हें नहीं पता वो लोग क्या कर सकते हैं।
और अरवाओं से किए गए वादों को भूल गई हैं?
क्या आप भूल गए कि पिछली बार इन दोनों ने आपके साथ क्या किया था?
उन्होंने अभी मुझे पहचाना नहीं है। मेरा उनसे कहीं ज्यादा घटिया इंसानों से पाला पड़ चुका है और मैं उन्हें सीधा कर चुका हूँ।
कहीं तुम उनके घर की दीवारें फलांकर उनके यहाँ से वो तमाम चेक्स, रसीदें और दीगर कागजात वगैरह चुराने का इरादा तो नहीं रखते? नतीजा मालूम है फिर क्या होगा, वो बड़ी आसानी से तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल की हवा खानी पड़ जाएगी।
मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हमेशा बुराई का जवाब अच्छाई से नहीं दिया जा सकता। अगर जरूरत पड़ी तो किसी को पैसे देकर काम करवा लूं।
मैं तो समझा था कि कोमे में जाने के बाद तुम सुधर गए होगे और अपने किए की तलाफी की फिक्र में होगे, लेकिन यहाँ तो नए नए हरबे सीख लिए गए हैं।
बस भी करो।
क्यों, कहीं तुम भी इसके साथ चोरी करने का इरादा तो नहीं रखती?
बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ मुझसे जो बन पड़ा मैं वो लाजमी करूंगी।
अगर मुमकिन हो तो मुझे हॉस्पिटल के दरवाजे पर उतार दें, मेरी गाड़ी वहीं पार। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज़।
हेलो मसूद, अस्सलाम वालेकुम। सुनो इस वक्त तुम कहाँ हो? हाँ नहीं, वो मैं पूछना चाह रहा था कि जो काम मैंने तुमसे कहा था वो तुमने किया? अरे यार वही परवाने के शोहर से मुताल्लिक। हाँ नहीं, मुझे एक और काम भी था तुमसे। तुमने क्या बताया, इस वक्त तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, जाना बत। अच्छा खुदा हाफिज।
कल भी इन्हीं कामों के सिलसिले में जाना है।
क्यों क्या हुआ, थक गए हो क्या?
यानी तुम नहीं थकी?
देखो कामरान, मुझे तुमसे एक बात कहनी है।
कहो।
जो कुछ हम दोनों के दरमियान पेश आया उसके पेश नजर मेरा ख्याल है कि हमें ईरान में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि मुझे डर है कि तुम अपनी बात से फिर जाओगे और बाहर मुल्क जाने पर भी पछताओगे। लिहाजा बेहतर है कि हम किसी और मुल्क चले जाएं और वहीं जाकर शादी भी कर लें।
अगर हम किसी और मुल्क गए और वहां जाकर तुम अपनी बात से मुकर गई और मुझसे शादी ना की, तो मैं जो तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ बेचने को तैयार हूँ, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं इस मसले में फिक्र
मैं कभी भी अपनी बात से नहीं फिरूंगी।
और मैं भी, लिहाजा मुझसे इस किस्म की बात करने की जरूरत नहीं। सुनो बहनोश, अब मैं इस मसले पर कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझ गई?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बैठो।
क्या हुआ?
क्या क्या हुआ?
परवाना के घर गए थे?
जल्दी क्या है, बैठो बताता हूँ।
मुझे जल्दी बताओ।
मैंने भी तो कहा बैठ जाओ, बताता हूँ। कुछ खाया है या नहीं?
नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना।
सुनो, एक चिकन बोटी बगैर चावल के, कोल्ड ड्रिंक के साथ, आप जाएं ले आए।
काफी है। आप कुछ बताओगे भी या नहीं?
सच पूछो तो, वो दरअसल
बोलो,
मैं तुम्हें क्या बताऊं?
उसका शौहर वही निकला ना? हाँ, खुद अमीर था ना? बोलो, वही लड़का ना? मुझे पता था, तो उस वक्त मैंने सही समझा था।
आखिर एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? खैर, इस मामले में तुम कितनी अजियतें उठाओगे बोलो? बिला वजह अपने लिए ज़हनी परेशानियां पैदा करते रहते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ पता चलेगा?
बस एक जवाब, अपने किए गए फैसले और इस पर परेशान होने के बारे में।
अब परेशान क्यों हो?
भला क्यों परेशान ना हूं?
दो साल के बाद अब किस बात का इत्मीनान करना चाहते हो? हाँ, किस बात का? अगर मुतमईन नहीं थे तो फिर परवाना को तलाक ही क्यों दी थी? अगर इंसान मुतमईन नहीं होता तो यूं तलाक तो नहीं देता। अब हो गए मुतमईन? एक सबूत पे दूसरा सबूत। मैंने एक बार तुमसे कहा था ना कि कीड़े लगे दांत को बाहर निकाल फेंको।
लेकिन अगर परवाना अमीर को चाहती थी तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की थी? आखिर क्यों?
ये कि तुम मालदार थे और वो लड़का, क्या नाम है उसका, अमीर, वो कंगाल था। लेकिन फिर तुमसे मिलने वाली मेहर की रकम से उनके दिन फिर गए। थैंक यू, शुक्रिया, काफी है।
शुक्रिया। तो फिर क्यों हर रात ड्रावने ख्वाब देखता हूँ मैं? क्यों उन्हें भूल नहीं पा रहा? क्यों उनसे नफरत नहीं कर पा रहा?
इसलिए कि तुम पागल हो और तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? एक मुलाकात का इंतजाम कर दूं परवाना और उसके शौहर के साथ?
नहीं, अब मैं दोबारा उन जख्मों को खरीदना नहीं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं।
ये हुई ना बात, आहिस्ता आहिस्ता अकल आती जा रही है तुम्हें। खैर, ये बताओ मुझसे क्या काम था तुम्हें? साथ साथ खाना भी खाते जाओ, सारा ठंडा हो गया है।
ये बताओ, फरामर्स का कुछ पता है?
कौन फरामर्स?
ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं, वही फरामर्स जालसाज।
अच्छा, क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था उससे। मैं चाहता हूँ, दरअसल मुझे उससे एक चोरी करवानी थी।
क्या चोरी? कहाँ?
क्या हुआ, घबरा क्यों गए भाई? एक मालदार आदमी के घर में, वहां उसे बहुत कुछ मिलेगा।
हम तो समझे थे तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो वही के वही हो। मैं कुछ समझा नहीं, हमें भी तो कुछ पता चले।
मैं चाहता हूँ कि वो हिकमत के घर जाए, उस बूढ़ी खातून के बेटे के घर जो सूद का पैसे।
वही होशंग और शिवा जिन्होंने जनाब की बहुत खातिर मदारात की थी। हाँ, तो यूं कहो ना कि जाती इंतकाम का मामला है ना?
नहीं भाई, इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो फिर यकीनन वो रसीदें और पैसे तुम उन मकरूजों के हवाले करना चाहते हो, है ना?
हाँ। नहीं तो क्या वो पैसे मैं खुद लेना चाहता हूँ? कैसी बातें करते हो तुम? फरामर्ज को फोन करो, मैं खुद उससे बात कर।
फरामर्ज गिरफ्तार हो चुका है, कोई फायदा नहीं, कुछ पता नहीं वो कब छूटेगा।
कुछ अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता। मैं जब भी कोई गैर कानूनी काम करना चाहता हूं तो रुकावट हायल हो जाती। अब ये मत समझ लेना कि मैं वही हो गया हूं। नहीं, بلکہ غلط کاموں کے تمام دروازے مجھ پر از خود بند ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی کہ ہر روز ایک نیا در مجھ پر واہ ہو جایا کرتا تھا اور ہر روز مجھے کامیابی ملا کرتی تھی، اب ایسا نہیں ہوتا۔
پریشان مت ہو، آگے بھی خوشبختی کے دروازے تم پر کھلیں گے۔ اب کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو چکا ہے، سارا مزہ خراب ہو گیا۔
$75,000 لالچی عورت میری ماں سے پیسے لینا چاہتی تھی۔
ہوشنگ کہاں ہو تم؟ کچھ ڈھونڈ رہے ہو کیا؟
میں نے اپنی گھڑی یہاں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ملی نہیں رہی۔
رات کے اس پہر تمہیں گھڑی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟
یہ دیکھو یہاں پڑی ہے۔ کچھ نہیں، الارم لگانا چاہتا تھا تاکہ صبح اٹھ سکوں۔ شیوا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں اگلے ہفتے دبئی چلا جاؤں تو کیسا رہے گا؟
کس لیے؟
سچ پوچھو تو جو کچھ ہم نے کیا ہے ان پیسوں کو جس طرح حاصل کیا ہے، اب تو یہاں رہنا ہمارے لیے بالکل محفوظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم یہاں رہے تو ممکن ہے کہ پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی۔
تم نے پھر میرے پرس کو ہاتھ لگایا ہے نا؟
کیوں، کیا ہوا؟
کچھ نہیں، ایسے ہی۔
چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟
کس بارے میں؟
یہی کہ ہم دبئی میں اپنا اکاؤنٹ کیوں نہ کھول۔
نہیں، فی الحال جانے کا پروگرام کینسل کر دو، کیونکہ میں تو خود جا رہی ہوں۔
خیر سے جاؤ، کب تک ارادہ ہے؟
پرسوں۔
بالا ہی بالا پروگرام بنا لیا، ہم سے کہا ہوتا تو ہم بھی ساتھ چلتے، ہم بھی اچھے شریک سفر ہیں۔
یہ ممکن نہیں، کیونکہ تمہیں یہی رکنا ہوگا حساب کتاب کے معاملات دیکھنے کے لیے، کیونکہ کل نہیں پرسوں ہمیں 2 کروڑ کی رقم ملنے والی ہے، یاد رکھنا۔ کیونکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں، 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گی، کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں، ڈپریشن ہو گیا ہے مجھے، اتنا اس منحوس ہاسپٹل میں آنا جانا ہوا ہے۔
خوشی سے جائیے۔
ارے پاگل ہو گئی ہو لڑکی، میں نے یہ تصویر بطور امانت لی تھی، تصویر کیوں پھاڑ دی تم نے؟ بولو۔
غلط کیا میں نے جو انہیں تلاش کیا، خود ہی اپنی ذلت کروائی، اپنے ہی زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔
لیکن آخر ہوا کیا ہے، کچھ پتا بھی ہے؟ تم کیا بکے جا رہے ہو؟ ابھی کل ہی تو میں ان کے گھر گئی تھی اور پیغام چھوڑ کے آئی ہوں کہ جو ہی وہ آئے مجھ سے رابطہ کریں۔ اتنی تلاش کے بعد تو جا کر کہیں وہ ملے تھے۔
آپ کو پتا بھی ہے اس کا شوہر کون ہے؟
نہیں تو کیا بیٹا اس نے شادی کر لی ہے؟
جی ہاں، اور وہ بھی
वो भी क्या?
मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं किया था, बल्कि मैंने तो काफी शराफत दिखाई कि उसे तलाक दी। वो शुरू से ही मुझे नहीं चाहती, बल्कि वो तो साबिका मोहब्बत के चक्कर में थी। मेरी माँ, मेरा मामला खत्म हो गया और मैंने कोई गलती भी नहीं की कि जिसकी मैं माफी तलाफी करूँ।
तुम फिर 2 साल पहले की तरह जल्दबाजी से काम ले रहे हो। क्या तुम खुद उससे मिले हो? आखिर क्यों उससे बात की है?
ना उससे मिला हूँ और ना ही मिलना चाहता हूँ। उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिले उससे
तो फिर तुम्हें कैसे पता चला?
इससे क्या फर्क पड़ता है? लानत हो ऐसी जिंदगी पर। कल से मैं सिर्फ ऑफिस संभालूंगा। अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा और सिर्फ अपनी फिक्र करूंगा, बस। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम मिस अलमी, कैसी हैं आप? चलें अंदर तशरीफ ले चलें।
नहीं शुक्रिया, ज्यादा जहमत नहीं दूंगी आपको।
प्लीज आइए बैठकर बात।
जी शुक्रिया, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं बस आपसे माजरत करने और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। जो भी जहमत आपने मेरे वालिद के लिए उठाई है उसके लिए शुक्रिया अदा करने।
इसमें शुक्रिया की क्या बात है? लेकिन खैरियत, इस अचानक तब्दीली की वजह पूछ सकता हूँ मैं? आपको तो मेरी बातों पर यकीन था ना?
जानती हूँ, इसलिए आई हूँ ताकि अपने रवैये की आपसे माफी मांगू। दरअसल कल रात मैंने पापा को ख्वाब में देखा। उनकी हालत बेहतर थी, वो आपका और पुरिया का नाम ले रहे थे। वैसे आपको पुरिया की खबर है?
पुरिया को मैंने हमारे शबे कदर में देखा था, लेकिन काफी परेशान और उदास नजर आ रहा था।
शबे कदर में?
जी।
और वो भी पुरिया? आखिर ये कैसे मुमकिन है?
पता नहीं, लेकिन अगर आपके बाबा की हालत अच्छी थी तो यकीनन पूरिया की वजह से। खुदा गरी के रहमत करे आलमी साहब को। अब अंदर तशरीफ ले चलें, यूं दरवाजे पर खड़े होकर बात करना मायूब लगता है।
नहीं शुक्रिया, आपको मजीद जहमत नहीं दूंगी, बस अब चलूंगी।
बहरहाल अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँ।
बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। किसी का फोन तो नहीं आया था मेरे लिए?
जी नहीं, कुछ लोगों ने फोन किया था कि राजी साहब से काम है, जब वो आए तो उन्हें बता दें।
तो क्या अब तक राजी साहब नहीं आए?
जी नहीं, वो अभी तशरीफ नहीं लाए।
ठीक है, वो आ जाए तो कहिएगा मुझसे मिलने जरूरी काम है। नादिर साहब, जनाब खान साहब, आखिर कब तक ये नावल पढ़ते रहेंगे? अभी खत्म नहीं हुआ।
क्यों नहीं जनाब, वो नावल तो कब का खत्म हो गया। ये दूसरा नावल है, बड़ा रोमांचक है।
अच्छा, क्या नाम है इसका?
जनाब फिलहाल माह रमजान है इसलिए कैंटीन बंद है।
जी बंद है, आला समाज भी और कैंटीन भी दोनों ही बंद पड़े हैं।
जनाब कल ऑफिस बंद होगा?
अच्छा अभी आती हूँ।
कौन था?
आपका चहिता भतीजा, आपका प्यारा कामरान।
जाने से पहले मेरी एक बात सुनती जाओ, तुम्हारी माँ ईरान से आ रही है, क्या ये सही है?
मुझे नहीं पता, शायद। क्यों आखिर क्या हुआ?
क्या वाकई तुम कामरान से शादी करना चाहती हो?
अगर वो मेरी शर्तें मान लेता है। हाँ।
तुम उसके साथ खेल खेल रही हो? लेकिन सबके साथ खेल नहीं खेला जाता, बिलखुसूस किसी शख्स के जज्बात के साथ। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
जी नहीं सर, आप खुलकर बताएंगे?
अगर तुम कामरान को पसंद नहीं करती तो तुम पर कोई जबर नहीं।
अब आप ये क्या बात कर रहे हैं?
तुम्हारी गलती ये है कि हमेशा अपनी माँ की बात बीच में जरूर लाती हो, इस बात में मुझे गुस्सा आता है।
आप खुद तो नामाकूल बात करते हैं और मुझसे माकूल बात की तवक्क रखते हैं।
जब मैं तुम्हारी माँ का नाम सुनता हूँ तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है, जख्म खुर्दा जो हूँ। लिहाजा सास हो गया हूँ, समझ रही हो ना? उसे फोन करो और कहो इस मुल्क में कदम ना रखे, वरना उसकी जिद में सही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है कि आप दोनों का आमना सामना हो। मैं जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की जिद और अनाओं की भेंट मुझे क्यों चढ़ाया जा रहा है? किसने आप लोगों को हक दिया कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाए? बाबा। शायद आप दोनों के एहतसाब का वक्त आ गया है। मामा को आने दीजिए, सब कुछ वाजे और रोशन हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, कोई खास काम था?
हाँ, मैंने पूरी रात सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ भी हो जाए, मुझे वो रसीदें हासिल करनी है।
और उसी तरीके से जिसका रात को तुमने जिक्र किया था, तुम जाओ थाने एफआईआर दर्ज कराओ और मैं चोरी करने। लेकिन मेरे यार, मैंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की है।
हाँ तो कभी मैंने कौन सा चोरी की है?
मैंने भी कभी चोरी नहीं की है। मैं तो उन बेचारे बेसहारा खानदानों की खातिर जो मुश्किल में है, ये काम करना चाहता हूँ।
मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये मजबूर, लाचार और परेशान हाल खानदान अपने लिए खुद कुछ क्यों नहीं करते। आखिर ऐसी क्या मुसीबत है कि हम इन चंद लोगों की खातिर अपनी जान मुसीबत में डालें?
जनाब मसूद खान साहब, आप मेरे जिगरी दोस्त हैं। जनाब के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, लिहाजा ये तावीलें पेश करने की कतई जरूरत नहीं है। साफ कहने के मैं आपको दोस्त नहीं हूँ।
दोस्त तो हूँ, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। मुझे कुछ सोचने दो, शायद कोई ऐसा किराए का चोर मिल जाए जो काबिले एतमाद भी हो।
ठीक है, जाओ खूब सोचो, मिल जाए तो उसे कहना कि काफी पैसे मिलेंगे उसे। अब जाओ।
ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ।
बहनोज, तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा हॉस्पिटल जाना मुनासिब होगा?
हाँ, मैंने इसमें क्या बुराई है?
मैं शहरयार की वजह से कह रही हूँ, अगर मुनासिब ना हो तो मैं सैनिटोरियम वापस लौट जाऊँ।
कोई बुराई तो नहीं, शायद आपके वहाँ जाने से उनकी तबीयत में बेहतरी आ जाए।
ठीक है,
अब ये मेरी अना का मसला बनता जा रहा है। उन खबीसों ने मेरे गुस्से को हवा दी है, अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
आपको खुद को किसी मुसीबत में डालने की कोई जरूरत नहीं है।
और हाँ, मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकूंगा।
कोई बात नहीं, हम मिसेस सलीम ज़ादा को आईसीयू लेकर जा रहे हैं, हम खुद ही उनके सारे काम कर लेंगे।
चले ठीक है, मैं भी जब तक जरा इन हिकमत साहिबान से अपना हिसाब चुकता कर लूँ। कोई और काम तो नहीं?
खुदा हाफिज, आप अपना ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
शहरयार, मेरे बच्चे, शहरयार, मेरी जान।
ये आप है माँ?
उठो मत,
ये माफ कर दे माँ। है कि आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया।
बस करो मेरे बच्चे, बस करो, बस करो मेरी जान, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा, परेशान मत हो।
आपने मुझे माफ कर दिया ना? कह देंगे मुझे माफ कर दिया।
मैंने तुम्हें माफ किया मेरे बच्चे, मेरी जान। भला मेरा तुम्हारे सिवा कौन है बेटा? ये तो तुम थे जो मुझे ले जाकर सैनिटोरियम के कोने में फेंक आए थे। मेरे तो बुढ़ापे का वाहिद सहारा ही तुम हो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें माफ किया, खुदाया तेरा शुक्र है।
आइए। कमाल है, कितनी बरकत वाली रात है।
देख रहे हैं, चंद रातों में तो उसकी काया ही पलट गई। पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया है। बहरहाल उस पर बहुत अच्छा असर पड़ा है।
मैंने तो कुछ नहीं किया। जब से प्रोफेसर आलमी साहब की बेटी से मिला है, जब से उसकी ये हालत हो गई है।
पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ
जी।
अच्छा तो मैं चलता हूँ, उसके साथ ही वुजू कर लेता हूँ।
जैसे आपकी मर्जी।
इल्तिमास से दुआ।
खुशा नसीब इसके, काश मेरी हालत भी इसकी जैसी होती और मैं जो हवा में मौलक हूँ अपनी इस हालत से बाहर निकल आता।
आपके काम में पेशरफ्त हुई?
हाँ हुई तो है, लेकिन अभी भी कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें मुकम्मल करना बाकी है। असल में मैं सोच रहा हूँ कि मिसेस हिकमत के बेटे के चुंगल से वो तमाम रसीदें किसी तरह हासिल कर लूँ। मिसेस हिकमत याद है आपको, वही सूदखोर खातून?
जी जी, लेकिन कैसे?
देखें, बिलाखिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना।
शायद आपने अर्जुमन साहब को बताया था कि आपके माल में कुछ माले हराम भी शामिल है जिसे आप पाक करना चाहते हैं।
जी ऐसा ही है।
आप उन पैसों से रसीदें खरीदना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इससे पहले आपको किसी आलम दीन या मुस्तहिद से रुजू करना होगा ताकि वो बता सके कि आपको अपने माल में से कितना निकालना होगा ताकि माल पाक हो सके।
जी
अगर आप चाहें तो हम नमाज के बाद इमाम जमात के पास चले चलते हैं और उनसे सवाल कर लेते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिसेज हिकमत के तमाम ही कर्जदारों को जिन्हें मिसेज हिकमत के बेटे ने जेल में डलवा दिया है आजाद करवा लेता, और फिर जो लोग मिसेज हिकमत की असल रकम अदा कर चुके हैं उन्हें उनकी रसीदें वापस कर देता। इस तरीके से आपको सवाब भी मिलेगा और आपका माल मुश्तबा माल से पाक भी हो जाएगा।
अरे नहीं भाई, वो मुझे क्यों तलाक देने लगा? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाह रही थी ताकि उससे छुटकारा हासिल कर सकूं। और क्या, उस बुढ़िया की तमाम दौलत जायदाद उसी को मिलेगी। मुझे मालूम है मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, वो भी अगर वो अपनी बात से ना मुकरे तो। मेरा हक महर तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए है, जबकि उस बुढ़िया की दौलत जायदाद अरबों खरबों में है। हाँ अगर वो मर जाए तब मेरे अलावा कोई और वारिस नहीं है, ना कोई बहन, ना भाई, ना अजीज, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फिर फोन करती हूँ।
कौन है?
करामती हूँ। सुनो, एक अच्छी ऑफर है।
किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं, तुम बखूबी जानते हो कि मेरे पास काफी दौलत है।
इतनी है कि मैं कम से कम तुम्हारे तमाम हिसाबों को यकमुश्त
अदा कर सकता हूँ, लेकिन तब सिर्फ मैं हूंगा और वो कर्जदार।
मेरा दिल चाहा तो मैं उन्हें बख्श दूंगा, वगरना मैं उनसे किस्तों में अपनी रकम वसूल कर लूंगा।
लेकिन क्या तुम उनसे ही सारी रकम एक साथ?
कौन है इतनी सुबह सुबह? सुबह का वक्त ही मिला था उसे।
तुम अभी उठी हो शिवा, क्या तुम चाहती हो कि एक ही रात में तमाम पैसे वसूल कर ले?
क्या कह रहे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
यकीन करो।
वो कैसे?
अंदर आ जाओ।
सुनो तुम्हारी बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं।
सब्र करो शिवा, सब्र करो। कोई लॉटरी निकला ये करामती साहब?
हाँ यूं ही समझ लो।
इतनी सुबह सुबह आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं?
अगर आप लोग बात करने के मूड में नहीं है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर कहीं और किसी और तरह हमारा सामना होगा।
बुरा क्यों मान गए? मैं तो समझता था कि काफी मजबूत आसाब के मालिक हो।
इत्तेफाकन ऐसा ही है, मैं बड़े मजबूत आसाब का मालिक हूँ तभी यहाँ आया हूँ, वगरना
तो मैं तुम्हारे इस वगरना से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारे इस वगरना ने तो मुझे मार ही डाला है। वगरना क्या?
वो तमाम चेक्स और रसीदें तुम्हारे ही तरीके से हासिल कर लूंगा, जबरदस्ती।
अच्छा अमन कलमबरदार, ये बताओ क्या डील करना चाहते हो?
तमाम रसीदें, रहननामे और चेक्स एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से उन तमाम चेक्स और रसीदों वगैरह की असल रकम तुम दोनों मलऊनों के हवाले कर।
माफ कीजिएगा, या तो आप पागल हैं या आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए हैं। बोले क्या है?
दोनों ही नहीं मैडम, दोनों नहीं, मैं बस लोगों को आप दोनों के शर से निजात दिलाना चाहता हूँ। आखिर आप दोनों अजियत पसंद जो ठहरे, मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, आप लोगों को तस्कीन मिलती है अपने कर्जदारों और दीगर लोगों को अजियत देने में।
अरे करामती साहब, आप तो काफी गुस्से में हैं, काफी भरे हुए मालूम होते हैं। आए आए बैठे। आप समझते हैं हम बहुत बुरे लोग हैं, हम तो सिर्फ अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। ना ये आजार है, ना अजियत, और ना ही अजियत पसंदी। बस एक बात पूछनी है आपसे, आखिर आप क्यों अपने पैसे हमें देना चाहते हैं? लोगों की खातिर या मेरी माँ की खातिर?
सारे जहां का दर्द इनके जिगर में जो है।
अच्छा,
फर्ज कर ले मैं इन दोनों लोगों की ही खातिर ये काम करना चाहता हूँ, आप लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपने पैसों से मतलब है ना, अपनी माँ की बर्बाद थोड़ी है, तो कम से कम किसी और को ही उनके लिए कुछ कर लेने
अहमकाना है। सिर्फ इसलिए? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा।
आपकी नजर में ये बातें अहमकाना है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी तरह मौत का मुशाहिदा किया होता तो आप डरते। मैं सिर्फ आपकी वालिदा के बारे में नहीं सोच रहा। अब अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरी अपनी कहानी। ये कि मेरे पास अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई?
हाँ हाँ जरूर बताइए, यकीनन इंटरेस्टिंग होगी।
चंद महीने पहले तक मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही सोचता था, अलबत्ता आप लोगों जैसा नहीं, आप लोगों ने तो मुझ जैसे को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मैं इतराफ करता हूँ कि दौलत का हसूल मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था और इसकी खातिर मैंने बहुत गलत काम भी किए, इसीलिए मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैं आप दोनों से निमट लूंगा। लेकिन उस तजुर्बे के बाद मैं बहुत डर गया। अब मैं चाहता हूँ कि उन चेक्स, रसीदों और ड्राफ्ट्स को खरीद कर अपने मुश्तबा माल को पाक करूँ। इस तरह एक तीर से तीन निशाने लगेंगे, पहला ये कि आपकी माँ को निजात मिल जाएगी, दूसरा ये कि बाकी लोग आपके शर से निजात पा लेंगे, तीसरे ये कि यूं मेरा मुश्तबा माल भी पाक हो जाएगा।
इतनी बड़ी रकम आप साथ लाए?
नहीं, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं आप दोनों के धोखे में नहीं आऊँ। इधर आप वो तमाम चेक्स और रसीदें मेरे हवाले करेंगे, उधर मैं वो तमाम रकम आपके हवाले कर दूंगा। इस तरह हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।
और सूद का क्या होगा? हमें रकम सूद के साथ चाहिए।
सूद की रकम? वो सब भी आपको दूंगा, बल्कि आपके मुंह पर मारूंगा। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए आप कोई फैसला कर लें। बस इतना जान लें कि ये माले हराम आपके हलक से नीचे नहीं उतर सकेगा।
तो क्या वाकई उसके पास इतनी दौलत होगी?
क्या तुमने इसकी कंपनी नहीं देखी?
पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दाल में जरूर कुछ काला है।
नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने तौबा कर लिए। क्या तुम भूल गई, हमें गुर्दों की अदायगी भी उसी ने की थी।
तो इसका मतलब कल हम अरबपति हो जाएंगे?
हाँ, लेकिन तुम इन नोटों की शक्ल नहीं देख पाओगी।
तुमने मुझसे कुछ कहा?
नहीं, मैंने कहा कि मुझे डर है कि इस शख्स की बातें सच हो गई तो हम वाकई मलून करार पा गए और हम पर कोई मुसीबत नाजिल हो गई तो।
यानी वाकई तुमने यही कहा था?
इसमें हंसने की ऐसी कौन सी बात है?
तो तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत पर हंसी आ गई। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ।
जाओ जाकर अब नींद सो जाओ।